हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 121। हर्षिता का मूड रुद्र से बात करते हुए थोड़ा अच्छा हो गया था, लेकिन डायरेक्टर का नाम आते ही वो बातें याद करके हर्षिता जैसे तैसे सोच सोचकर अटकती हुई बोल रही थी। लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही रुद्र उसकी बात बीच में काटता हुआ बोल पड़ा, नाम मत लो उस कमीने घटिया आदमी का। मुझे तो उस पर इतना गुस्सा आ रहा है और मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने उसे कम मारा, उसको और ज्यादा मार की जरूरत थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई, वो भी शिविका की कंपनी में काम करते हुए ऐसा कुछ करने की? अपने साथ साथ कंपनी का नाम भी बर्बाद कर रहा था। और फिर तुम? इतना बोलते हुए रुद्र ने एकदम से वहीं बीच सड़क पर कार रोक दी और जो कुछ भी उसने हर्षिता के साथ उस डायरेक्टर की बातचीत सुनी थी वो याद करते हुए उसने गुस्से में स्टेयरिंग पर अपना हाथ मारा। रुद्र को इतने गुस्से में देखकर हर्षिता अपनी जगह से थोड़ा सा पीछे हो गई और उसके चेहरे पर घबराहट भी नजर आ रही थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। रुद्र थोड़े गुस्से से हर्षिता की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी टू से हर्षिता, पर तुम्हारी जैसी लड़कियों की वजह से ही ऐसे लोगों की हिम्मत और बढ़ती है। क्यों तुम उसी वक्त उसके खिलाफ नहीं गई, क्यों उसके अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठाई? और अगर तुम्हें उस वक्त बोलने में कुछ भी करता तो कम से कम घर वापस जाकर शिविका से तो बता ही सकती थी ना, या उसके साथ भी इतनी कंफर्टेबल नहीं हो? रुद्र ये सब बोलते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में और फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था। उसे इस तरह से देखकर हर्षिता थोड़ी सी घबरा गई और अपनी सीट पर ही हल्का सा पीछे होकर हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए आराम से बोली, मुझे सच में तब समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं और मैं इतनी घबराई हुई थी। मेरे साथ पहली बार ही ऐसा कुछ हुआ। हाँ, सब बोलते जरूर थे मेरी सिटी में, वहाँ और घर पर भी, कि ये इंडस्ट्री ऐसी ही है और यहाँ पर ये सब कुछ तो झेलना ही पड़ता है सबको, लेकिन तब मैंने इतना नहीं सोचा इस बारे में। लेकिन जब मेरा भी रियलिटी से सामना हुआ तो मैं बिल्कुल। इतना बोलते हुए हर्षिता सब कुछ याद करके फिर से चुप हो गई और फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए रुद्र की तरफ देखकर बोली, खैर छोड़ो, मैं ये सब तुम्हें क्यों समझा रही हूँ, तुम एक लड़के हो और तुम ये सब कभी नहीं समझ सकते हम लड़कियों को क्या क्या झेलना पड़ता है। बट मैंने भी अब दीदी से प्रॉमिस किया है तो अब कुछ भी होगा तो मैं उन्हें बताऊंगी और उस वक्त ही उसके अगेंस्ट बोलूंगी भी, ऐसे चुप नहीं रहूंगी। मैं अब समझ चुकी हूँ कि मुझे क्या करना है। हर्षिता ने अपने मन की पूरी बात रुद्र के सामने बोलते हुए कही। उसकी बात सुनकर रुद्र ने अपने सिर पर एक हाथ रखा और खुद को शांत करते हुए बोला, ओह सॉरी, मैं शायद थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, बट पता है मैं ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी झेल नहीं पाता हूँ। बहुत सेंसिटिव हूँ मैं इन सब में, और किसी भी लड़की या लड़के किसी के भी साथ अगर मैं गलत होते देखता हूँ ना तो मुझसे चुप नहीं रहा जाता, और सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। रुद्र ने एक ही सेंटेंस में दो बार सॉरी बोला तो फिर हर्षिता भी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, बस करो, और कितनी बार सॉरी बोलोगे? वैसे भी मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहते हो। हर्षिता की ये बात सुनकर रुद्र थोड़ा सा हंस दिया और फिर वो दोनों आपस में बात करते हुए कुछ कंफर्टेबल हो गए और रुद्र ने भी दोबारा से अपनी कार स्टार्ट कर दी और फिर वो उसे शिविका के घर छोड़ते हुए इवेंट हॉल के लिए निकल गया। हर्षिता आज बहुत ही खुश होकर वहां से वापस घर आई, क्योंकि एक तो उसके साथ गलत करने वाला इंसान पकड़ा गया और दूसरा वो ऑडिशन में मेन मॉडल के लिए भी सिलेक्ट हो गई, जिसके लिए उसे अगले दिन से प्रैक्टिस के लिए जल्दी वहां पर पहुंचना है और इस बारे में सोचकर ही वो काफी एक्साइटेड है। दूसरी तरफ शिविका का केबिन ऑफिस। शिविका ने अभी अभी साहिल के साथ चल रही कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात करके कॉल डिस्कनेक्ट की थी और वो इतनी देर से लोगों को कन्विंस करने में लगी हुई थी। करण भी वहां पर उसके सामने खड़ा हुआ था। उसने शिविका के साथ वो कॉल अटेंड नहीं किया, लेकिन कंपनी की हेड ज्वेलरी डिजाइनर अंकिता शिविका के साथ ही वहां पर बैठी हुई थी। वो लोग इस बार बहुत ही ज्यादा मनमानी कर रहे थे और उन्होंने सारी बातें मनवाने के लिए ही ये फोन कॉल किया था। शिविका उन्हें साफ मना कर देना चाहती थी, लेकिन अब तक इवेंट में सारा पैसा लग गया था और कंपनी को कोई भी नुकसान ना हो इसीलिए थोड़ी उनकी बातें मानते हुए और बाकी अपनी बातें उन्हें मनाते हुए दोनों ने कॉल पर जैसे तैसे समझौता कर लिया। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही करण ने कहा, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है अब उन लोगों का, मुझे तो ये समझ नहीं आता मैम आप इतना क्यों झेल रही हैं ऐसे लोगों को। शिविका अभी फिलहाल बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी। कॉल पर जो कुछ भी बात हुई उसे सोचते हुए सब कुछ प्रोसेस करके समझने की कोशिश कर रही थी। वो अभी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी, अच्छा या बुरा कोई भी सलाह, लेकिन करण ने इतना बोल दिया। करण की बात पर थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए शिविका ने कहा, बार बार वही सवाल करने से कोई जवाब नहीं मिलने वाला है करण, और वैसे भी इवेंट का सारा काम ऑर्गेनाइज हो चुका है और ऐसे में अगर मैं भी उनकी तरह एक बात को लेकर उस पर आ जाऊंगी तब तो हो चुका फिर सारा काम। शिविका की बात सुनकर करण को थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन अंकिता भी वहां पर दोनों के बीच बैठी हुई थी और उसने कुछ भी नहीं कहा, एकदम कोशिश नहीं की। एकदम प्रोफेशनली बिहेव करते हुए शिविका की बात समझते हुए करण बोला, ओके मैम, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे शायद बीच में नहीं बोलना चाहिए। इतना बोलकर वो वहां केबिन से बाहर चला गया, क्योंकि उसे तो ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। करण को ये बोलकर वहां से बाहर जाता देख शिविका को भी बुरा लगा और वो उसे आवाज लगाकर रोकना चाहती थी, लेकिन अंकिता के वहां पर होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाई। टेंशन में शिविका ने अपना सिर पकड़ लिया और अभी तो कुछ भी उसने करण को बोला उसके बारे में सोचकर रिग्रेट करने लगी। तभी अंकिता ने कहा, मैम, करण सही कह रहा है, आपने बेवजह ही उस पर चिल्ला दिया और मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि उन लोगों का कुछ ज्यादा ही हो रहा है, लेकिन मुझे पता है कि ये इवेंट हमारी कंपनी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने उनकी सारी बातें मानी और डिजाइन में चेंज करने को राजी हो गई। और इसके लिए मुझे भी पूरी रात जागकर आज काम करना पड़ेगा, तभी सारे चेंज हो पाएंगे। और इसके बाद भी कोई भरोसा नहीं है कि फाइनल डिजाइन पर वो लोग राजी होंगे या बाद में उनके और भी कुछ डिमांड बढ़ जाएंगी, अंकिता ने अपनी परेशानी बताई। उसकी बात पर शिविका थोड़ा सोचते हुए बोली, नहीं, ये लास्ट टाइम था, अब मैं उन लोगों की कोई भी डिमांड पूरी नहीं करने वाली। और हाँ, तुम जाओ, अभी से काम शुरू करो, जरूरत हो तो अपने साथ और एक दो लोगों को रोक लेना ओवरटाइम के लिए, लेकिन ये सब आज ही खत्म होना चाहिए। शिविका के इंस्ट्रक्शन सुनकर अंकिता ने ओके मैम बोलते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया और वहां केबिन से बाहर चली गई। लेकिन शिविका उसकी कही बात के बारे में ही सोच रही थी और उसे भी लग रहा था कि उसने बेवजह ही करण पर चिल्ला दिया, जबकि वो सही बोल रहा था। लेकिन शिविका ने करण पर सिर्फ इस वजह से नहीं चिल्लाया था, वो करण पहले भी इस बारे में बार बार यही बात बोल चुका था और उसने लगातार दो बार शिविका से ये बात कही थी और अब तीसरी बार उसे ये बात बोलते सुनकर शिविका उससे थोड़ी अपसेट हो गई, इसीलिए ही उसने करण को थोड़ा सा डांट दिया था। वैसे वो नॉर्मल करण से ऐसे बात नहीं करती है और सबके सामने भी नहीं, वो काफी अच्छी तरह से पेश आती है, लेकिन अभी उसे काम का ही काफी ज्यादा स्ट्रेस हो गया था, उस पर क्लाइंट की इतनी सारी डिमांड भी एक बोझ है।
और करण है कि वो कुछ भी बात समझने के लिए तैयार नहीं, वो बस बार बार एक बात ही दोहरा रहा था कि उसे साहिल की कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अब तो शिविका ने ये कॉन्ट्रैक्ट या डील जो भी है साइन कर ली है, तो वो पीछे नहीं हट सकती है ऐसे लास्ट मोमेंट पर, और ये बात उसके लिए करण को समझाना काफी मुश्किल होता जा रहा था। अंकिता के वहां से बाहर जाने के बाद शिविका भी अपने काम में लग गई और उसे लगा था कि करण अभी थोड़ी देर बाद किसी काम के लिए आएगा तो वो उसे इस बारे में एक्सप्लेन कर देगी और उसे समझा लेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। करण आज रोज की तरह शिविका के केबिन में नहीं आया। पिछले एक दो घंटे से वो एक बार भी शिविका के केबिन में नहीं आया और वो बाहर ही बैठा हुआ बाकी सबके साथ काम में लगा हुआ था और पूरी मेहनत और लगन से वो भी इवेंट की तैयारियों में लगा हुआ है। भले ही उसने शिविका से इस काम के लिए मना करने को कहा, लेकिन असल में वो भी काम को काफी सीरियसली लेता है। सारे इंतजाम और सब देखने के बाद करण बस अभी आकर वापस अपनी सीट पर बैठा था कि तभी निधि वहां पर आई और बोली, इतना काम मत किया करो करण, कौन सा बॉस तुम्हें कोई एक्स्ट्रा सैलरी देंगी। निधि की ये बात सुनकर करण ने एक नज़र उठाकर उसकी तरफ देखकर कहा, उस हिसाब से अब से तो तुम्हें सैलरी मिलनी ही नहीं चाहिए। करण का ऐसा सीधा जवाब सुनकर निधि एकदम ही चिढ़ गई और बोली, व्हाट डू यू मीन, क्या मैं कुछ भी काम नहीं करती हूँ। करण ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए सीधे तौर पर कहा, हाँ, अब समझदार को इशारा ही काफी है, अब इतनी समझदार तो हो तुम कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्योंकि अगर काम कर रही होती ना तो ऐसे आकर मुझे कुछ भी एडवाइस देने का टाइम ना होता तुम्हारे पास। उसकी ये बात सुनकर निधि चिढ़ गई और उसने कहा, मैं तो बस तुम्हें अप्रिशिएट करने के लिए वो सब बोल रही थी कि तुम काफी ज्यादा काम करते हो वो, लेकिन पता नहीं तुम्हारा ये एटीट्यूड क्यों है इतना ज्यादा, तुम्हें क्या लगता है तुम इतने ज्यादा हैंडसम हो या फिर तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है ऑफिस में। करण निधि की बात को लेकर उससे बहस नहीं करना चाहता था क्योंकि वो पहले दिन से ही उसके पीछे पड़ी हुई है। किसी तरह से करण ही हमेशा उसे इग्नोर करता है, लेकिन वो किसी न किसी बहाने से उसके आसपास मंडराती नजर आ ही जाती है। करण उसे जरा भी पसंद नहीं करता, इसलिए उसने सीधे ही कहा, देखो निधि, अब ये सब कुछ तो तुम खुद ही कह रही हो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। निधि ने अपसेट होने की एक्टिंग करते हुए कहा, यू नो करण, आई लाइक यू बट आई डोंट थिंक यू डिजर्व मी, पता नहीं क्या समझते हो तुम अपने आप को, कहीं के हीरो हो क्या। निधि की ये बात सुनकर करण ने कहा, मुझे कोई शौक भी नहीं है हीरो बनने का, और वो भी तुम्हारे सामने, इसलिए जाओ और जाकर अपना काम करो, कोई जरूरत नहीं है इस तरह मेरे आगे पीछे घूमने की, क्योंकि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी लाइफ में पहले से ही कोई और है, क्रमशः।